أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں اور ہمارے اس کاریکرم کے سبھی درشکوں آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر نماز جماعت سے سمبندھت احکام کو لے کر اپستھت ہوئے ہیں آج ہم جس بارے میں بات چیت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور سمبندھت مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کا شیرشک ہوگا کہ نماز جماعت میں نمازی کا دائتو کیا ہے. آج ہم اپنے اسی شیرشک پر بات چیت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور سمبندھت مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پچھلے کاریکرم میں آپ کے سامنے نماز میں سملت ہونے کی وشیش پرستھتیوں کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اسی کاریکرم کے آگے کی کڑی یہ چیز بنتی ہے کہ جس سمے ایک نمازی جماعت میں شامل ہو رہا ہے, شامل ہو چکا ہے اور اس نے نیت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا ہے, اس سمے اس کا کیا دائتو ہے, کیا فریضہ ہے, اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جو ایک معموم کو, ایک نمازی کو نماز جماعت میں دھیان رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے تکبیرۃ الاحرام امام جماعت کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک امام جماعت کی تکبیرۃ الاحرام پور روپ سے سماپت نہ ہو جائے, وہ پوری تکبیر نہ کہہ دے, تب تک معموم یعنی جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تب تک تکبیرۃ الاحرام نہ کہیں. یہ احتیاط واجب ہے اکثر علماء کے نزدیک, اکثر مجتہدین کے نزدیک, لیکن آیت اللہ سیستانی یہاں پر کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب تک امام جماعت کی تکبیرۃ الاحرام سماپت نہ ہو جائے تب تک معموم تکبیرۃ الاحرام نہ کہے. یعنی ادھکتر جو علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ ایسا کار نہیں کرنا چاہیے, لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ یہ کار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جب امام جماعت اپنی تکبیرۃ الاحرام کو سماپت کر لے اس کے بعد معمومین تکبیرۃ الاحرام کہیں. دوسری چیز جو دھیان رکھنے والی وہ ہے وہ یہ ہے کہ معموم جس سمے نماز جماعت میں شامل ہوا ہے اس سمے حمد اور سورہ, پہلی اور دوسری رکعت میں جو حمد اور سورہ پڑھا جاتا ہے اس کے اتیرکت نماز کے سارے ذکر کو وہ سوئم بولے گا, سوئم پڑھے گا اور امام جماعت کے ساتھ ساتھ ان سارے ذکروں کو اور ان سارے کاریوں کو انجام دے گا. لیکن اگر امام جماعت کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے اور معموم کی پہلی یا دوسری رکعت ہے تو اس کو حمد اور سورہ بھی خود پڑھنا ہوگا, اور اگر حمد اور سورہ دونوں پڑھنے کا ٹائم نہ ہو, اگر سمے کم ہو تو کم سے کم حمد اوشے پڑھنا ہوگا. اس بات کا نماز میں دھیان رکھنا چاہیے اور جس سمے معموم شامل ہو رہا ہے اس سمے اس بات کا دھیان رکھے کہ حمد اور سورہ کے اترکت جتنے بھی کار ہیں, چاہے وہ رکوع کا ذکر ہو, چاہے سجدے کا ذکر ہو, چاہے دوسرے ذکر ہوں, سب کے سب اس کو سوئم پڑھنے ہوں گے اور امام کے ساتھ ساتھ ان کو انجام دینا ہوگا. جس سمے معموم نماز جماعت میں شامل ہوا ہے تو وشیش نماز کے حساب سے اس کی وشیش دائتو ہو سکتے ہیں. یعنی اگر نماز الگ الگ بھن بھن جو نمازیں ہوتی ہیں انہی کے آدھار پر اس کے بھن بھن دائتو ہوں گے. جیسے کہ اگر نماز ظہر اور عصر میں ایک معموم نماز میں جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو ظہر اور عصر کی نماز میں معموم کو حمد اور سورہ پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے, اس کو حمد اور سورہ نہیں پڑھنا ہوگا, بلکہ مستحب یہ ہے کہ جس سمے امام جماعت حمد اور سورہ پڑھ رہا ہے اس سمے یہ دوسرا ذکر پڑھے گا. جیسے کہ ہم کو اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہوتی ہیں وہ اخفاتی نمازیں ہیں, یعنی ان کو پہلی دو رکعتوں میں بھی امام جماعت ان کو دھیمی آوازیں پڑھتا ہے, تو بھلے ہی امام جماعت دھیمی آوازیں پڑھ رہا ہے اور معموم کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے, लेकिन उसके बाद भी मामूम को हम्द और सूरा पढ़ने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि पहली दो रकअतों में जिस समय इमाम जमात हम्द और सूरा पढ़ रहा है उस समय यह दूसरे जिक्र को पढ़े। तो ये उस समय हुआ जब नमाज थी जुहर और असर की, लेकिन अगर नमाज सुबह की या मगरिब की या इशा की है तो क्या होगा? तो अगर नमाज सुबह की, मगरिब की या इशा की है तो उसकी दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ये वो नमाज़ें हैं जिसमें पहली दो रकतें जहरी हैं यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती हैं। तो अगर जिस समय वो शामिल हुआ है जमात में, तो अगर हम्द और सूरा जो इमाम जमात पढ़ रहा है वो इमाम जमात की आवाज़ को सुन रहा है, यानी किसी ऐसी सफ़ में, किसी ऐसी पंक्ति में खड़ा हुआ है, किसी ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ है जहाँ पर उसके कानों तक इमाम जमात की आवाज़ आ रही है। तो अगर इमाम जमात की आवाज़ उस तक पहुँच रही, भले ही उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इमाम जमात क्या पढ़ रहा है, अगर केवल उस तक इमाम जमात की आवाज़ पहुँच रही है तो उसको खामोश रहना है, उसको हम्द और सूरा नहीं पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ चुप रहना है और इमाम जमात की आवाज़ को सुनना है। तो एक परिस्थिति ये हुई कि इमाम जमात की आवाज़ उस तक पहुँच रही थी तो उसको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इमाम जमात की आवाज़ को सुनना है। और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि नमाज वही सुबह, मगरिब या इशा की है और ये जहरी नमाज है, लेकिन वो इमाम जमात की आवाज़ को सुन नहीं रहा है, मसलन वो तीसरी या चौथी या किसी और सफ़ में है, उस तक इमाम जमात की आवाज़ नहीं पहुँच रही है। तो अगर इमाम जमात की आवाज़ मामूम तक नहीं पहुँच रही है और नमाज सुबह की, मगरिब की या इशा की है, तो मुस्तहब ये है कि वो धीमी आवाज़ में हम्द और सूरे को पढ़े, तेज़ आवाज़ उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, धीमी आवाज़ में पढ़ना होगा। तो ये वो चीज़ थी कि जिस समय इंसान नमाज में शामिल हो रहा है नमाज कौन सी है, उसकी विशेष परिस्थिति क्या है। तो अगर जुहर और असर की है तो उसको असलन पढ़ने का अधिकार नहीं है बल्कि ज़िक्र पढ़ना होगा। मगरिब और इशा और सुबह की है तो अगर आवाज़ को सुन रहा है तो नहीं पढ़ेगा, अगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो मुस्तहब ये है कि धीमी आवाज़ में हम्द और सूरे को पढ़े। उसके बाद जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं और हर वो इंसान जो नमाज़ पढ़ता है जानता है कि नमाज में पूरी नमाज में, सारी नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक वो जिनको हम अंजाम देते हैं यानी अपने शरीर से हम अंजाम देते हैं, जिसको हम कहा जाए हमारे व्यवहारिक जो सूरत होती है वो होती है, या करनी कहा जाए जो हमारी करनी होती है, एक दूसरे जिसको हम बोलते हैं जो पढ़ते हैं जिसको अकवाल या कथनी हम कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ नमाज में, यही दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों के आधार पर इमाम का अनुसरण एक मामूम को किस प्रकार करना चाहिए उसी के आधार पर मसाइल बदलते हैं। तो पहली चीज़ जो हमारी कथनी में आती है यानी अकवाल में, जैसे कि मसलन रुकू का जिक्र है, सजदे का जिक्र है, तो यहाँ पर हमारे फुकहा कहते हैं कि रुकू और सजदे और इस प्रकार के जिक्र में इमाम जमात से आगे बढ़ना मामूम के लिए कोई आपत्ति नहीं रखता है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, यानी मामूम इमाम जमात से पहले रुकू के जिक्र को, सजदे के जिक्र को, इन चीज़ों को पढ़ सकता है और उससे उसकी नमाज के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी और उसकी नमाज सही होगी। केवल सिर्फ़ और सिर्फ तकबीरतुल एहराम में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक इमाम जमात तकबीरतुल एहराम ना कह दे तब तक मामूम तकबीरतुल एहराम नहीं कह सकता है, उसको कहने का अधिकार नहीं है। तो ये अकवाल में हुआ यानी कथनी में, जो हम बोलते हैं, जो हमारे जिक्र हैं उसमें हमारा फरीज़ा क्या होगा, हमारे दायित्व क्या है। दूसरी चीज़ नमाज में जो पेश आती है वो जो हम करते हैं, जो हम अपने शरीर से जो कार्य अंजाम देते हैं, जिनको हम आमाल या व्यवहारिक चीज़ें या करनी कह सकते हैं, जैसे रुकू करना, जैसे सजदा करना और इस प्रकार की चीज़ें। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि वो आमाल जो अंजाम दिए जाते हैं उसमें मामूम को ये अधिकार नहीं है कि वो इमाम से पहले उनको अंजाम दे, कि वो मामूम से पहले मसलन रुकू में चला जाए या मामूम से पहले मसलन सजदे से सर उठा ले, इस प्रकार के कार्य करना उसको सही नहीं है, उसके लिए जायज़ नहीं है। तो उसके बाद अब अगर, चूंकि उसके लिए जायज़ नहीं, अब अगर कोई व्यक्ति, कोई मामूम जानबूझ कर इमाम से पहले रुकू में चला जाए या इमाम से पहले सजदे से सर उठा ले, तो हमारे बास फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि उसने गुनाह किया है लेकिन उसकी जमात में कोई आपत्ति नहीं है, उसकी नमाज सही होगी। उसकी नमाज़ सही होने में कोई आपत्ति नहीं, उसकी जमात भी सही है, उसकी नमाज़ भी सही होगी। लेकिन यहाँ पर आयतुल्ला सिस्तानी एक अलग फतवा है उनका, थोड़ा सा भिन्न है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इमाम से पहले रुकू में चला जाए, या इमाम से पहले रुकू में सर उठा ले, या इमाम से पहले जानबूझ के सजदे में चला जाए, या इमाम से पहले जानबूझ के सजदे से सर उठा ले, तो उसकी जमात सही नहीं है, उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। तो आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा भिन्न था जो हमने आपके सामने बयान किया। उसके बाद जो अहकाम जमात से संबंधित जो हुक्म हो सकते हैं वो ये है कि जिस समय इंसान इमाम जमात है, जमात में सम्मिलित हुआ है, वो स्थान क्या था। जैसे कि हमने आपको सामने एक बार पूर्ण रूप से बताया था कि पिछले किसी कार्यक्रम में कि जिस समय नमाज जमात में आदमी सम्मिलित होता है, रकात कौन सी है, किस स्थिति में शामिल हो रहा है। यहाँ पर हम विशेष प्रकार से जो बहस करेंगे वो ये होगी कि इंसान जिस समय नमाज जमात में शामिल होना चाहता है वो समय रुकू का है। रकात कोई सी भी हो, उससे लेना देना नहीं है, बल्कि समय वो है कि जब इमाम जमात रुकू में है। तो जिस समय इमाम जमात रुकू में है और एक मामूम नमाज जमात में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसकी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं कि कैसे शामिल हो रहा है। सबसे पहली परिस्थिति यह है कि जिस समय इमाम जमात रुकू में है और मामूम शामिल होना चाहता है, वो उस समय शामिल हुआ है कि इमाम जमात रुकू में था और रुकू का जिक्र पढ़ रहा था, उस समय एक मामूम ने नियत की और रुकू में पहुँच गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सारे फुकहा ये कहते हैं कि उसकी नमाज़ सही है, उसकी नमाज़ के सही होने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि जिस समय मामूम रुकू में पहुंचा है, रुकू का जिक्र इमाम का समाप्त हो चुका था। जैसे अगर इमाम ने सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे कहना इमाम को है, तो वो ये पूरा जिक्र समाप्त कर चुका था, लेकिन अभी उसने अपने सर को रुकू से उठाया नहीं था। ये मामूम रुकू में पहुंचा है, उस इमाम का जिक्र समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी उसका सर रुकू से उठा नहीं है, उस समय ये रुकू में पहुंच जाता है। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर इमाम के रुकू से सर उठाने से पहले मामूम रुकू में पहुंच जाता है, तो उसके नमाज के सही में होने में कोई आपत्ति नहीं है, वो उसकी रकअत मान ली जाएगी और उसकी नमाज जमात से सही होगी। तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? तीसरी परिस्थिति ये है कि इमाम जमात रुकू में था, इसने नियत की और रुकू में चला गया, लेकिन इससे पहले कि रुकू में पहुंचता इमाम जमात रुकू से उठ चुका था। इमाम जमात रुकू में था, इसने नियत की और रुकू में फ़ौरन चला गया, लेकिन इससे पहले कि रुकू में पहुंचता इमाम जमात रुकू से अपने सर उठा चुका था। तो अब क्या होगा, क्या उसकी नमाज ये सही होगी, जमात में शामिल हो गया या नहीं? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति पेश आती है कि उसके रुकू में पहुंचने से पहले इमाम जमात ने सर उठा लिया था रुकू से, तो उसकी जमात फुरादा से सही होगी, जमात से उसकी नमाज नहीं मानी जाएगी, और उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी इसी नमाज को फुरादा की नीयत से तमाम करे, नमाज को तोड़ नहीं सकता है, उसको अपनी नमाज को समाप्त करना होगा। लेकिन यहाँ पर आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा भिन्न है। वो ये कहते हैं कि अगर मामूम ऐसे समय पहुँचता है रुकू में जिस समय इमाम ने रुकू से सर उठा लिया था, तो अब उसको इस बात का अख्तियार है, चाहे वो अपनी इस नमाज को फुरादा की नियत से तमाम कर दे, पूरी नमाज पढ़ डाले फुरादा की नियत से, या फिर ये कि अपनी इस नियत को तोड़ दे, नमाज को तोड़ दे और रुका रहे, उस यहाँ तक के रुका रहे कि इमाम जमात दोबारा खड़ा हो, दूसरी रकातें पहुँचे और फिर वो नियत करे और जमात से नमाज अंजाम दे। यह आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा था जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। उसके बाद की जो परिस्थिति ये हो सकती है कि इमाम जमात रुकू में था और मामूम ने नियत की और रुकू में पहुंच गया, लेकिन अब इसको ये शक हो रहा है कि मैं जो रुकू में पहुंचा था, क्या मैं रुकू में उस समय पहुंच गया था कि इससे पहले कि इमाम सर उठाता या नहीं उठाता, या इमाम ने सर उठा लिया था तब मैं पहुंचा। इसको शक हो रहा है कि मैं इमाम के सर उठाने से पहले पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। तो यहाँ पर हमारे फुकहा, हमारे मुज्तहदीन ये कहते हैं कि उसकी नमाज़ फुरादा की नियत से हो जाएगी और उसको चाहिए कि फुरादा की नियत से अपनी नमाज को समाप्त करे, ये नमाज जमात की नमाज नहीं मानी जाएगी। उसके बाद एक और परिस्थिति जो ये हो सकती है वो ये है कि इंसान ने नियत की और रुकू के लिए झुकना शुरू किया, यानी रुकू की हालत पहुँचा, रुकू के लिए झुकना आरंभ किया था, और इससे पहले कि वो रुकू में पहुँचता यानी पूरा झुकता, इमाम जमात रुकू से उठ गया था, तो अब वो क्या करेगा? तो हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं कि उसको इस बात का अख्तियार है कि या वो तो वहीं से फुरादा की नियत के साथ अपनी नमाज को समाप्त करे, या तो ये करे कि वो नियत वहीं पर रोक के वहीं पर खड़ा रहे, यानी अभी रुकू में नहीं पहुंचा था। इमाम जमात उस झुकना शुरू किया था उसने, इमाम जमात रुकू से उठ गया है। तो अब इसका एक तो अख्तियार ये है कि अपनी जमा अपनी नमाज़ को फुरादा की नीयत से समाप्त कर दे, दूसरा तरीका ये कि यहीं पर खड़ा रहे और खड़ा रहे यहाँ तक कि इमाम जमात अपनी पहली रकात को समाप्त करे। नमाज जमात जब पहली रकात समाप्त हो जाए, जब दूसरी रकात खड़ा हो तो उसके साथ वो अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाए, और इमाम जमात जब दूसरी रकात में होगा तो इसकी ये पहली रकात मानी जाएगी। एक तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वो खड़ा हुआ है और इमाम जमात की जो नमाज़ है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और इतनी लंबी हो जाती है कि लोग देखने वाले ये कहें कि ये जमात में सम्मिलित ही नहीं था, तो उसको चाहिए कि वो फुरादा की नीयत से ही अपनी नमाज़ को आगे बढ़ा दे और अपनी नमाज़ को समाप्त करे। यहाँ पर उसको जमात से नमाज़ पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, यानी ये रकात उसकी जमात में शामिल नहीं की जाएगी। तो ये वो विशेष फरीज़े, वो विशेष दायित्व थे जो एक मामूम को नमाज जमात के संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता थी, जो हमने आपके सामने भी बयान किए। इसके अलावा इमाम जमात और जमात से संबंधित कुछ और भी अहकाम है जो हम अपने अगले किसी कार्यक्रम में आपके सामने अवश्य पेश करेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।